ओम शांति। तो संपूर्ण आहुति क्या डालेंगे सोच लो, डाल के तो जानी है, आखिर में संपूर्ण आहुति डालनी जरूरी होती है। सोच लो क्या डालेंगे, कोई ऐसी चीज जो जीवन में सफलता के मार्ग में बाधक हो, जो पुरुषार्थ में आगे न बढ़ने देती हो, जो परिवारों में कोई संस्कार, जो परिवारों में सबका प्रिय न बनने देती हो, ऐसा कोई संस्कार उसका त्याग कर देना। संकल्पों में बहुत बल है या नहीं? बाबा के अनेक बच्चों ने ज्ञान में आकर संकल्प ही तो किया था, उसे पीना नहीं है, अच्छे अच्छे पीने वाले थे, छोड़ दिया। कईयों ने संकल्प किया अब क्रोध नहीं करना है। हम जानते हैं क्रोध को छोड़ना एक अच्छी लंबी साधना है, पर इस संकल्प से छूट गया बहुत। सब संकल्प करेंगे क्या छोड़ना है, और एक चिंतन मैं आप सबको दे रहा हूं। चिंतन है संगम युग के अगले समय को, मैं 10 साल कह दूं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ दिखाई देगा दुनिया में। अगले 10 सालों को हम कैसे बिताना चाहते हैं, लिख लो जिनके पास डायरी पेन है। क्या कुछ हमारे पास प्लानिंग है कि अगले कल्प का भाग्य बनाने के लिए हम अगले 10 सालों में ये कर लेंगे। सब भाई और माताएं ग्रस्त में रहने वाले बैठे हैं, आपको 4 बच्चे हों, आपको पता है इनकी शादियां करानी पड़ेंगी, शुरू कर देते हैं प्रबंध करना। कितने साल पहले? नहीं, उससे पहले पैसा इकट्ठा करना, पैदा होते ही शुरू कर देते हैं, अब इनके लिए जमा करना है। जन्म जन्म की रजाई मिल सकती है, द्वापर में भी और कलयुग तक भी। क्या उमंग है कुछ, या गृहस्थ में ज्यादा उलझ गए हैं? चेक कर लेंगे। यहां मनुष्य को कोई उलझाता नहीं, वो स्वयं उलझता है, ये रहस्य समझ लेना है। मनुष्य को कोई उलझाता नहीं, वो स्वयं को स्वयं उलझाता है, उसकी इच्छाएं उसकी कामनाएं उसे उलझा देती हैं, बंधनों में डाल देती हैं। हम लक्ष्य बना लें संगम युग, मैं 10 साल कह रहा हूं, अगले 10 साल परमात्म मिलन के सुख में बीते। सोच लो सभी, सुखों में बीते बिताना चाहेंगे या नहीं? हाथ उठाओ जो चाहेंगे। किसके आगे हाथ उठाया? ये ना सोचना मैं थोड़ा ही देखूंगा आपके घर जाके, बाबा के सामने उठाया है। एक सुंदर प्लानिंग के साथ चलना, आज ही बहुत अच्छी कोई प्लानिंग कर लो। बहुत बड़ी प्लानिंग तो सदा चला नहीं करती, सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग जिसको हम सदा चला सकें, अपने अपने कार्य व्यवहार परिवार समस्याएं बाधाएं उनको जानते हुए हम सदा प्लानिंग को चला सकें, ऐसी प्लानिंग कर लो। सवेरे उठ सकते हैं क्या? कौन कौन उठ सकते हैं? मैं उठ सकते हैं का उठते हैं नहीं पूछा। जो उठते भी जो जोड़ा है, जो उठते हैं वो हाथ उठाएं, ठीक है बस, सब नहीं उठाना, मुझे पता कहीं नहीं उठते, आजकल तो ठंड भी बहुत है। जरूरी नहीं आप 2 बजे उठें, ये भी जरूरी नहीं आप सब 3 बजे उठें, पर 4 बजे उठ जाना ही है। उठते ही और कुछ याद ना आए, बाबा की मुरली में अभी अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो, अगर कुछ और याद आ गया तो सत्यानाश। मैं कहा वाह प्रभु जी बड़े कड़े हो गए आज तो, क्यों? अब मैं तो इस बात को जानता हूं, आप भी जान जाएंगे और जानते हैं, सवेरे मैं ये बात बहुत चलाई है क्लासेज में कि सवेरे उठते ही हमारे 10 मिनट स्वर्णिम पीरियड ऑफ लाइफ, गोल्डन पीरियड है 10 मिनट। सभी अगर कोशिश करके इन 10 मिनटों में कुछ भी याद न करें, एक सुंदर संकल्पों की चेन चल जाए 10 मिनट, सुंदर विचार, तो बस जीवन को ये 10 मिनट बदलने वाले हो जाएंगे। जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करा देंगे ये 10 मिनट। सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है, इसलिए अगर सवेरे उठते ही कुछ याद आ गया और, तो फिर संकल्प उधर बह जाएंगे, उसका गहरा इफेक्ट जीवन पे पड़ता रहेगा। अब आपके लिए याद करने की चीजें बहुत हैं, गृहस्थ में रहने वालों को बहुत चीजें हैं याद करने की, सवेरे सवेरे याद आ ही जाता है कुछ भी। और इसके लिए सबसे अच्छी विधि होती है सोने से पहले आधा घंटा अच्छी तैयारी करके सोना। अगर आप ये मैनेज कर सको कि सोने से पहले आधा घंटा फिर से अलौकिक, टीवी देखते बातचीत करते हुए घर की समस्याओं में बिजनेस में इसको ठीक कर ले, जरा 10:30 सोना है तो 10 बजे से सब कारोबार बंद। भाइयों से पूछता हूं, हो सकता है ये? बिजनेस वालों को देखिए देर होती है लेकिन करना है। अब एक भाई मेरे पास आया था बिजनेसमैन, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। मैंने कहा दुकान से कब आते हो? 11 बजे। मैंने कहा छोड़ दो बस पुरुषार्थ, पैसा ही कमा लो। टेन लगा नहीं करना है सोने में, अवश्य 12:30 बजेंगे। कोई कहे 4 बजे उठ जाएं, उठ भी गए तो फिर सोएंगे, कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं बिल्कुल ना उठो, कम से कम नींद तो पूरी कर लो। अभी उसको लगन थी तो मैंने कहा दुकान तुम्हारी है, नौकरी है, दुकान मेरी है, क्या तुम 9 बजे बंद नहीं कर सकते? कर सकता हूं, बस तो कर दो, मान लिया उसने। कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा या नहीं? और कुछ पाना माना छोटा मोटा पाना नहीं है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति अथा धन संपदा। तो कुछ तो छोड़ना पड़ता है और ये मैनेज करने की बात है अपने जीवन को। और सबको याद रखना है जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगे, ज्ञान खजाना है ना, उसके पास स्थूल खजाने सहज आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान ने कहा हुआ है। जब से कहा था ये बात मुझे भूली नहीं है। 4 तरह की शक्तियों का वर्णन किया था, जिसमें ज्ञान का, धन धन स्थूल धन की शक्ति, योग से प्राप्त हुई शक्तियां, और जन की शक्ति यानी संगठन की शक्ति। माताओं को ये समस्या रहती है कि पति अगर 11-12 बजे आए फिर गर्म खाना खिलाना पड़े, खिलाना ही पड़ता है, नहीं तो पति कहेंगे घर से वहीं चले जाओ बस तुम भी। हाँ, तो वो अमृत वेला कैसे करें? बच्चे भी जगते रहते होंगे फिर तब तक। हाँ फिर आपसे अमृत वेला नहीं होगा, फिर शाम का टाइम अच्छा योग कर लो। शाम माना 6 से 8 के बीच, 6 से 7.5। अगर आप अच्छा योग कर लेंगी तो पूर्ति हो जाएगी। बाकी आप 12:30 सो के सोचो अमृत वेला भी हो जाए, नैमी नाथ तो बन सकते हैं, बाकी होगा नहीं। इसलिए मैंने कहा पूरा कर लो। माताओं को एक चीज और कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को बहुत जल्दी ना उठाएं। एक कन्या आई मेरे पास, प्रश्न पूछा, भाई जी निद्राजीत कैसे बने? अच्छा, मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? 10वीं क्लास में। मैंने कहा कितना घंटा सोना चाहती हो? 4 घंटा। मैंने कहा क्यों? मम्मी सवेरे उठाने लगती है 4 बजे से, उठो उठो अमृत वेला नहीं करती है, मनहूस हो गई है, 2-4 महावाक्य सुना देती है। सोती कब हो? 11 बजे सोती हूँ पढ़ के, कभी 11:30 बज जाते हैं। सबको याद रहे, बच्चे युवा उनको नींद 8 घंटे चाहिए ही। अगर आपको ज्यादा ही लगन है उनको योगी बनाने की तो 7 घंटे, इससे कम आप करेंगे तो उनके ब्रेन पर बुरा असर आएगा 20 साल तक की आयु वालों को। दिन में वो सोएंगे नहीं, स्कूल में होंगे, रात को पढ़ेंगे, फिर आप कहो अमृत वेला योग नहीं करती, भाग्य नहीं बनेगा तुम्हारा, कैसी हो, तो नहीं मजा आएगा ना उसको ना आपको। ये समय लेना चाहिए सभी को। उनको योगी बनाने के लिए तो पढ़ाई छुड़ा दो, पढ़ाई नहीं छुड़ा सकते तो उनको 7 घंटे सोने के बाद जो इतना टाइम मिले उसमें योग करना सिखा दो। और वो आपके कहने से योगी नहीं बनेंगे, मैं आपको बता दूं, माताओं को खास जो अपनी कन्याओं से जबरदस्ती ज्ञान में चलने की और योग करने की बातें करते हैं, कन्याएं बड़ी होते ही निकल जाती हैं। हो सकता है वो आपके घर से भी निकल जाए, आजकल बहुत साधन है निकलने के, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर क्या क्या है, पता है माताओं को इन चीजों का। इसलिए ज्ञान और योग जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अब उसका योग लगता ही नहीं, उसे नींद आ रही हो, आपने 4 बजे उठा दिया, खुद सोचो, ये नहीं सोचना मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें, खुद सोचो, वो 11 बजे सोई है, अब उसे नींद आ रही है, उसका योग लगेगा नहीं, आप उसे जबरदस्ती उठा रहे हैं, इससे बाबा थोड़ा ही खुश हो जाएगा। योग तो बहुत सूक्ष्म विद्या है, सूक्ष्म विद्या है जिसमें हम सबको देहभंस से न्यारा होकर और बाबा के स्वरूप पर अपने को स्थिर करना होता है। आपकी भावनाएं तो अच्छी रहती हैं कि आपके बच्चे भी योग करें, अच्छा इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सब कुछ देखकर ही करना है, सभी इसमें समझदार बने। समझ रही ना माताएं मेरी बात? समझदार बने, नहीं तो बच्चे सोचते हैं ज्ञान योग का अपना धंधा नहीं, इसमें तो बड़ी कट्टरता है, ये है वो है, थोड़ा सा हल्का, हाँ आप उन्हें बुराइयों से बचाएं, वो गलत राह पे न जाएं, इससे बचाएं। और ये बचाना भी तब हो सकता है, बोलो कब? क्योंकि आजकल गलत राहें तो खुली हुई हैं बहुत, घर से बच्चे गए आपके, फिर वो आपके बस में नहीं है, फिर उन पर किसी और चीज का अधिकार होता है। कैसे बचाएंगे गलत राह पर जाने से? क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात हो रही है, हमें तो टीचर्स बताते हैं जो पढ़ाते हैं ना, कनाइंथ क्लास से ही लड़के लड़कियों का हाल बिगड़ गया, जो कॉलेजों में बिगड़ता था ना बीए फाइनल में या एमए में जाने पर, वो अब 9th से बिगड़ गया है, कलयुग का प्रभाव हो रहा है। कैसे बचा सकेंगे उन्हें आप गलत राह से? जब आपकी मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी, जब आपके स्वमान बहुत अच्छे होंगे, जब आपकी वाणी में उनके लिए बहुत ज्यादा मधुरता प्यार सद्भावनाएं भरी होंगी, केवल अधिकार नहीं, ध्यान दें सभी माँ बाप, आजकल अधिकार का जमाना, बोलो बाप जो बैठे हो बताओ, बहुत चला गया, अधिकार से काम नहीं चलता, मेरे हैं इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे भारत की कल्चर थी छोटे बड़ों की बात सुनते थे, अब बड़ों को छोटों की सुननी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं? पड़ती है। इसलिए समझदारी पूर्वक समय की गति को पहचानते हुए, समय का खेल है ना, बच्चों का दोष नहीं हम दे सकते, समय का खेल है, बहुत बुरा इफेक्ट है समय का। अपनी अच्छी स्थिति के वाइब्रेशन से उनको संभाला जा सकता है। बस एक ही लाइन याद रखेंगे, जो अपने को संभालना जानते हैं वो दूसरों को संभाल सकते हैं। अपने को संभालने का अर्थ तो समझते हैं ना, अपनी स्थिति को संभालना। छोटी बातों में क्रोध आता रहे, छोटी बातों में स्थिति बिगड़ती रहे तो नहीं कुछ होगा। अब संगम युग समाप्ति की ओर जा रहा है, हर साल नए नए रंग दिखाएगा ड्रामा, अभी भी दिखा दिया ना बिना मतलब बैठे बैठे। अभी एक हफ्ता पहले सब कुछ अच्छा था, चार पांच दिन में ही सारा खेल बिगड़ गया, हमारा ज्ञान सर तो फिर से बंद हो गया। विदेशियों को क्या बुलाया, दो को कोरोना जो निकला बैन हो गया। देखो ये भाग्य की बात है ना, उनके लिए तीन चार मास रखे ये, लेकिन ड्रामा और भाग्य। तो सभी नियम कुछ बना लें, संपूर्ण आहुति है, मैं सोच के तो कुछ और आया था, पर बहन जी ने कहा संपूर्ण आहुति है तो डलवा देते हैं, स्वाहा कर दो। पुरानी किसी भी चीज की तरफ, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज की तरफ आकर्षण हो, उसे प्राप्त करने के लिए मन लालायित रहता हो, उसको यहां समर्पित करके जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है मनुष्य के पास जिसको वो पाना चाहता है, और उसे पता होता है वो पाया नहीं जा सकेगा, फिर भी संकल्प बहुत चलते रहते हैं। एनालाइज करें अपने को, विश्लेषण करेंगे, जो चीज पाई नहीं जा सकती उसे छोड़ ही दें फाइनली। मैगजीन में बहुत पहले एक लेख छपा था, जगदीश भाई जब थे तो एक बड़ा फिलोसोफर रोज दुकानों में जाता था और चीजें देखता था, रोज खाली घर लौट आता था, कोई उसे देखता था कि रोज आता है, खरीदता तो कुछ भी नहीं है। आखिर उसने उससे पूछा, तुम रोज आते हो, घंटों बाजार में रहते हो, इस दुकान उस दुकान पे जाते हो, लेते कुछ भी नहीं, क्यों आते हो? कहा, मैं जो चीज लेना चाहता हूं ना, अंदर से आवाज आती है, इसके बिना तो काम चल जाएगा। जितनी भी चीज देखता हूं एक आवाज आती है, इसके बिना काम चलेगा? हाँ चलेगा, छोड़ दो। ये उसने सिखाया कि मनुष्य की अननेसेसरी इच्छाएं उसके मन को भटकाती हैं। सोच लें सभी, एक बार बाबा से प्रतिज्ञा कर ली प्योरिटी की, एक संकल्प ले ले, पावरफुल संकल्प, अब उस मार्ग पे नहीं जाना है, कर लो अच्छी तरह बाबा के सामने संकल्प। ये सुंदर समय पावन बनने का चल रहा है, अब वो मार्ग हमने छोड़ दिया, उस पर नहीं जाना है। बोलो पसंद है? सबको पसंद है, माताओं को भी, भाइयों को, लेकिन केवल प्रतिज्ञा से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए? और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और वो है, देखिए प्योरिटी तो हमारा मूल संस्कार है, लेकिन इन वासनाओं के बीज को नष्ट करने के लिए कम से कम 4 घंटे रोज योग चाहिए ही, बैठकर नहीं ध्यान देंगे। बैठना जिसको जितना पॉसिबल हो उतना बैठे, बाकी कर्म में स्मृति स्वरूप होना उसका प्लान बनाओ। बिना अच्छे योग अभ्यास के किसी भी आत्मा को इम्प्योरिटी खींचती ही रहेगी, युद्ध चलता रहेगा। क्यों मैंने बच्चों के लिए माताओं को बात कही, भले मेरी बात बहुतों को भाती नहीं होगी, क्या हो रहा है ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सब भाई बहनों को बताओ क्या हो रहा है, और सब इसके अनुभवी हैं अपने जीवन से। जैसे जैसे आयु बढ़ती है अंदर की वासनाएं शरीर में प्रबल होती जाती, आत्मा की बात नहीं कर रहे हम पहले, शरीर में प्रबल होती जाती हैं, वो उन्हें पवित्र रहने नहीं देती है। इसलिए बिना योग के न हम कर्मेंद्रियों को शीतल कर सकते, न आत्मा को पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए समझ लें, 4 घंटे स्मृति स्वरूप होना तो हमारी केवल खुराक है, खुराक। वो नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे, जैसे फिर ये विकार अनेक इच्छाएं अपनी ओर खींचती रहेंगे। क्यों बाबा के बहुत बच्चे ज्ञान छोड़कर गए हैं? अगर अब 12 लाख हैं तो 12 लाख ही गए हुए हैं। क्यों गए? जो खून से लिख के देते थे निश्चय पत्र भगवान के सामने है, जिनको कोई संशय नहीं था, जो रोज सेवा बहुत करते थे, पर गए क्यों? कुमार कुमारियों की तो लंबी लिस्ट है, गृहस्थियों की भी है, क्योंकि सेवा तो की, तन भी लगाया धन भी लगाया, मुरली पे ध्यान नहीं दिया और योग मुक्त जीवन रखा। योग सुना सभी ने, बहुत कुमार, मैं कुमारों को सावधान करता हूं, ज्ञान योग करते हो फिर सोते हैं सवेरे, रात को देर तक सेवा भी की, वे सो गए 6 बजे उठे, मुरली के समय बहने काम बता देंगी, सेवा करो मुरली हम सुनेंगे तुम्हारी बदले, बहने बुरा ना मानना, भाई लोग शिकायत करते हैं मेरे को कि जब मुरली में आके बैठो तभी दीदी काम बताती है। मैंने कहे तो भाई तुम जानो और तुम्हारी दीदी जाने, हम क्या करेंगे। तो योग न होने से माया खींचने लगती है, इसलिए बहुत ध्यान देंगे स्मृति स्वरूप होना। मैं कुछ स्मृतियां आपके सामने रख देता हूं जिनकी प्रैक्टिस कर्म में, जब आप थोड़े भी खाली हो तब शाम को बैठना भी बहुत अच्छा होता है। जो बिजनेस में नहीं है, लौकिक जॉब में है, उस शाम का टाइम अवश्य निकाल लें, 7 बजे से भी कर लें, 1 घंटा करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा पौना घंटा भी आपको चार्ज करेगा, आपकी थकान को मिटाएगा। और ये थकान जन्म जन्म की मिटती है, एक एक दिन की थकान नहीं, जन्म जन्म की थकान है वो मिट जाती है। और जो सवेरे कर सकते हैं वो सवेरे करें, और अपने को चेक कर लें। मैं ये बात आपको एक कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। जब आपका योग अच्छा लगता हो तब कर लें। अब एक ऐसा केस मेरे पास है, जिस बहन को थोड़ा डिप्रेशन रहा है, सवेरे तो नहीं उठ सकती, लेकिन उसने मुझे बताया, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, कि मेरा योग 10 बजे से 2 बजे दिन में बहुत पावरफुल होता है। मैंने कहा यही करो। अब उसे कहें कि नहीं ये तो तामसिक टाइम आ गया है, सवेरे योग करो, सवेरे वो उठ नहीं सकती, डिप्रेशन के कारण गोलियां खा लेती है। तो देखो, हर एक को अपनी मेंटलिटी के अनुसार जान लेना चाहिए कब मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। हर एक का टाइम अलग अलग भी हो सकता है। अब कोई नहीं सोच सकता कि जब मुझे वो बात बता रही, मैं सोचा शाम का समय कहती होगी मेरा योग अच्छा लगता, पर 10 से 2 का बहुत पावरफुल। कुछ लोग बताते हैं उनका अमृत वेले योग लगता ही नहीं, लेकिन 5 बजे बिना लगाए लग जाता है। कुछ लोगों का केस है कि गुरुवार और संडे को योग ही नहीं लगता, कुछ भी कर लूं, इसके अलावा योग लगा ही रहता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हरेक का समय होता है, समय का इफेक्ट मनुष्य पर बहुत पड़ता है। इसलिए जब आपका योग अच्छा लगता हो, सवेरे 6 बजे अच्छा लगता हो, माताओं का किचन में अच्छा लगता हो, मैंने ठीक कहा या नहीं? किचन को वरदान है। मेरा योग अब तक भी किचन में ही सबसे अच्छा लगता है। हालांकि मैं अभी ज्यादा तो बैठता नहीं हूं, पर शांतिवन में जब होता हूं, 1-1 घंटा सवेरे शाम तो बैठता हूं वहां जाकर, वहां जैसा योग कहीं नहीं लगता। आप भी अपने किचन को ऐसा बना लो, बनाएंगी माताएं, जहां अभ्यास ज्यादा किया जाता है वो स्थान चार्ज हो जाता है, और वहां ही आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने घरों में ध्यान से सुन लेंगे ये बात भी, आप अपने घरों में कोई स्थान ढूंढ लो जहां बैठते ही आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती हो। उसमें भी किसी एक ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक सन्यासी था बहुत अच्छा, जिसको भविष्य का ज्ञान भी होता था, किसी को देखकर, मुझे देखते ही बताया उसने कुछ, फिर कहा नॉर्थ में मुंह करके बैठोगे तो एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। अच्छा सन्यासी था, ऐसा वैसा नहीं, मांगने खाने वाले नहीं, ये शिष्य वाले नहीं जिन्होंने ये वो कर लिया है, करोड़ों शिष्य बनाए, बिल्कुल एक अच्छा तपस्वी सन्यासी था वो। तो आप अपने घर में एक जगह ऐसी ढूंढ लो जहां एकाग्रता बहुत अच्छी होती हो, क्योंकि अर्थ वाइब्रेशंस, धरती के वाइब्रेशंस भी हमारी एकाग्रता में मदद करते हैं। तो 5 स्मृतियां ध्यान से सुन भी लेंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने बहुत की थी। ब्रह्मा बाबा के आखिरी 3 साल गहन तपस्या के थे। मामा के जाने के बाद बाबा लग गए थे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में। एक अभ्यास पहले ध्यान से समझ लेंगे और फिर इशारे में लिख लेना, सब जानते हैं आप, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हमें करना है। मैं आत्मा परम धाम से उत्तरी देव युग में, नहीं आप सब जानते हैं, सारा लिखने की जरूरत नहीं। परम धाम से उत्तरी देव युग में मैंने शरीर लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, 5000 साल की यात्रा मैंने पूरी की है, इस अंतिम देह में हूं। देखेंगे अपने को भ्रकुटी कुटिया में, अब भगवान का साथ मिला है, अब ये सब कुछ छोड़कर मुझे वापस चलना है। उड़ती हुई जा रही हूं, जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, ये दुनिया खाली होगी। चिंतन अब लिख लो इशारे में, ये सुदर्शन चक्र है, स्मृति है ये, इससे देहवाहन टूटता जाएगा। बाबा का बहुत अच्छा अभ्यास था और बाबा ने मुरली में कहा अभी अभी पीछे, सोते समय ये अभ्यास करो, तैयारी हो जाएगी अगले दिन की। बाबा की एक बहुत सुंदर बात मैंने बहुत क्लासेस में रिपीट की, क्योंकि मुझे बहुत भा गई वो, आपको भाती है, बस प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे शरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। लिख लो ये पूरी बात, रोज पढ़ लेना एक बार। जो बच्चे शरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वो स्वेच्छा से देह त्याग करेंगे, इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? बहुत अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ने बहुत किया था, ममा ने बहुत किया, दादी जानकी और दादी गुलजार ने बहुत किया, बड़ी दादी ने भी किया। गुलजार दादी के बहुत सारे अनुभव मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं जाऊंगा एक दिन नीलू बहन के पास, उनकी थोड़ी तबीयत ढीली है। मैंने कहा सारे सुना दो, मैं उनको लिपिबद्ध करके किताब बनवा देता हूँ सुंदर। और वो इतने सुंदर हैं कि उन्हें पढ़कर एक तो संसार को ये पता चलेगा कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, कितनी बड़ी चीज है। उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त थी, एक है दिव्य दृष्टि, दूसरा अंतर्दृष्टि। उन्होंने कैसे स्वेच्छा से शरीर छोड़ाया आखिर में, वो बता रही थी। मैं तो अभी थोड़ा ही समय सुना है, तबीयत ठीक हो जाए तो जाते हैं उनके पास। के दादी कह रही वो जो मेरा बड़ा डॉक्टर था उसे बुलाओ, कई आते थे ना, एक मुख्य था। दादी इंतजार कर रही है, वो आया, बिजी था कहीं, बस उसको देखा, दृष्टि दी और गए। आखिरी सीन, उसको दृष्टि से बहुत कुछ देना चाहती थी। तो हम सभी दो स्मृति हो गई, दोनों जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल आत्मा की हैं। तीसरा, बाबा ने हमें पांच स्वरूपों की याद दिलाई, हमें याद आई या नहीं पूछना है सभी को अपने से। रोज याद दिलाते हैं बाबा, एक बात रोज याद दिलाते हैं। अभी मैं वो आपको याद दिला रहा हूं और सभी अपने से पूछेंगे मुझे याद आई ये बात। तुम सभी सतयुग में निर्विकारी देवता थे, रोज रोज आती है। तुम सतयुग में निर्विकारी देवता थे, आज भी था ना, सोने हीरो के महलों में जाकर रहेंगे। हालांकि हमारे लिए सोने हीरो के महलों का कोई महत्व नहीं होगा तब, अथवा धन संपदा होगी, लेकिन बाबा भविष्य की झलकी दिखाता है। तो हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी देवता थे, स्मृति में लाया करें, बहुत सुंदर स्मृति है ये। हमारे प्योर संस्कार जगते जाएंगे। सत्ययुग त्रेता युग का संपूर्ण देवत्व, ध्यान से सुन लेंगे, बात गहरी है, किसी को क्वेश्चन उठे पूछ सकते हैं आप। सत्ययुग त्रेता का देवत्व, देवता थे ना, सारा देवत्व था हमारे अंदर, वो अब भी हमारे ब्रेन में प्रिंट है। मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, आत्मा में तो है ही, हमारे इस ब्रेन में भी प्रिंट है, जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। वो दबा बस डेड पड़ा है, उनको आगे का ज्ञान कुछ नहीं है कि ये डेड क्या है, उसमें क्यों अचेतन, मन अचेतन थोड़ा ही होता है, मन तो चेतन है, पर मन का वो हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है, जैसे डेड पड़ा है, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, उसमें ये सब भरा हुआ है। अगर हम याद करेंगे मैं ज्यादा बार नहीं कहता, दो बार याद कर लो, सवेरे उठकर 6 बजे तक अच्छी तरह कभी भी, और रात को या सोने से पहले। मैं सत्ययुग में संपूर्ण निर्विकारी देवी थी या देवता था। वो जागृत हो जाएंगे, जो सोए हुए हैं ना, जो डेड हैं, वो अलाइव जागृत हो जाएंगे, फिर से चेतनता आ जाएगी और हमारी प्योरिटी सरल होती जाएगी। बाबा को जानना, मुझे जनवरी जब से शुरू हुई उससे 2-4 दिन पहले से ही बाबा की एक बात याद आ गई थी, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, शायद किसी ने सुनी, और सुनाता हूं। बाबा ने साकार मुरली चलाते हुए कभी कहा, मैं अपनी शक्तियों को समा कर तुम्हारे सामने बैठता हूं, अगर मैं अपनी सर्व शक्तियों के साथ आ जाऊं तो तुम सब भाग जाओ यहां से। समझ गए ना, बहुत तेजस्वी हैं। शास्त्र वालों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, हजारों सूर्यों से अधिक तेजो में हैं। ठीक है, हजार तेज कोई गर्मी को नहीं कहते, तेज एक सूक्ष्म चीज है, आत्मिक शक्ति है वो। तो बाबा तो अनंत तेजो में है, और क्या याद करेंगे आगे, स्मृति, वो मेरे साथ है। ये छोटी सी स्मृति, इसके बहुत सारे चमत्कार आप देखेंगे। वो मेरे साथ है तो निश्चिंत और निर्भय, केवल यही, ये नहीं कि ये कहते भी रहे वो मेरे साथ है, रोते भी रहे, वो मेरे साथ है निश्चिंत निर्भय। जिसके साथ भगवान हो उसके साथ सब कुछ सुंदर होगा, होगा या नहीं। मैं एक कहानी इस क्लास में, यहां जो क्लास होती है, हर बार सुना देता हूं। टीवी पर तो बहुतों ने सुन ली है, पर आप सब ने सुनी हो न सुनी हो, मैं सुना देता हूं। कोरोना की कहानी, सुंदर कहानी है ये, खराब कहानी नहीं, भावनाओं की कहानी, परमात्म प्रेम की कहानी है ये। एक माता आई मेरे पास, ज्ञान सरोवर में भट्टी चलती थी, तो भट्टी में आई थी, कहा एक अनुभव सुनाने आई हूं, समस्या नहीं है अनुभव है। क्या, कोरोना हो गया मुझे, हॉस्पिटलाइज थी मैं, 5 दिन हो गए, न नहाई, रोज भोग लगाती थी, मन तड़फने लगा। माताएं भावनाओं का महत्व भी समझ लें, माताओं में भावना ज्यादा होती है, पर भाई भी समझ लें, आज है भावना या नहीं। अभी उसने कहा मुझे तड़फन हो गई बाबा, 5 दिन हो गए आपको भोग नहीं लगाया, नहाई भी नहीं हूं। अब वहां नहाने तो नहीं देते होंगे। अब देखो, अगर भाई होता तो क्या सोचता, अब यहां भोग थोड़ा ही लगा सकते हैं, बाबा को भोग लगाने वाले बहुत हैं, ठीक है मैं नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, नहीं नहाए कोई भी तो नहीं नहा रहा हॉस्पिटल में, क्या हुआ। जो विवेकवान होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं ना, लेकिन वो माता सोच रही थी, नहीं बाबा भोग लगाना मुझे आपको, बस वो बात ही कर रही थी और सीन बदल गया, वो खो गई और उसने देखा मैं शांति स्तंभ पर हूं, यहां ऊपर से किरणें पड़ रही हैं बाबा की, स्नान हो रहा है। देखो वैसे तो पानी किसी स्नान होता है ना, ये परमात्म किरणों से स्नान हो गया, कहा मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, भूल गई कपड़े वपड़े बदलने की बात। फिर ख्याल आया, पर बाबा भोग, कहा बस कोई आया और मेरे हाथ में थाली दे दी, मैंने बाबा को भोग लगाया, आत्मा तृप्त हुई, उसी दिन से ठीक होने लगी। 5-7 दिन में मैं ठीक होकर घर आ गई। समझ रहे हैं ना, बुद्धिमान क्या सोचेगा, बाबा थोड़ा ही डॉक्टर है, बाबा ने कहा मैं थोड़ा ही तुम्हारा इलाज करने आया हूं, मैं तो पावन बनाने आया हूं, ये सब धंधे मेरे नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन माता तो जिद करके बैठ गई, आपको ही ठीक करना, मुझे मैं नहीं जाऊंगी कहीं, करना पड़ा ना पार्वती के लिए। देखा जिद कर देती थी शंकर जी के सामने, आखिर महादेव जी को झुकना ही पड़ता था, वे इसकी तो माननी ही पड़ेगी नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। भावनाएं बहुत बड़ी चीज है। तो भगवान हमारा साथी है, चौथी स्मृति में आपको ये दे रहा हूं, वो सर्वशक्तिवान। देखो जब मैंने ये अभ्यास किए तो मुझे नशा रहता था, शास्त्रों में सुना था, उसकी भौंएं टेढ़ी हो जाएं तो सातों सागर थर्राने लगते हैं, पर्वत हिलने लगते हैं, ये ताकत उसमें है। वो कटु नजर से कहीं देख ले तो चारों राहकार हो जाएगा। और ऐसा बाबा, बोलो बोलो ना, मेरा है और मेरे साथ है, मेरी जिम्मेदारी उसने ली है, वो मेरी बहुत केयर करता है, वो मेरा बहुत ख्याल करता है। बस हम गलती करते हैं, दो भुजा वालों के पास ज्यादा जाते हैं। बाबा ने कहा कई बार, हजार भुजा वाले को छोड़कर दो भुजा वालों के पास क्यों जाते हो। सुना देता हूं फिर वो कहानी जो मैंने बहुत सुनाई, एक ही मिनट में सुना देता हूं। द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, गुरु के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, भीष्म पिता के पास, सबके पास गई, सबने सिर नीचा कर लिया। आखिर में गई, बोलो, याद आया श्री कृष्ण, नीचे वालों ने मदद करने से इंकार कर दिया, श्री कृष्ण सामने दिखने लगा, चीर बढ़ा दिया, खेल पूरा हो गया। द्रौपदी उलहना दे रही है, तुम आते तो हो पर देर बहुत लगाते हो, भक्ति में कहावत है ना, भगवान के घर देर बहुत है अंधेर नहीं है, तुम देर बहुत लगाते हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, याद रखना सदा के लिए बात, बोले द्रौपदी देर तुमने लगाई या मैंने, किसने लगाई थी, अगर पहले ही याद कर लेती तो इनकी ओर देखना ही ना पड़ता। बस ये याद रखना सदा ही, भगवान सर्व संबंधों सहित सर्व शक्तियों सहित हमारा है, हमारे साथ है, और जब भी उसे बुलाएंगे, बोलो, दौड़ा चला आएगा। इसको छोटा न समझना, हल्के में न लेना, भगवान के आते ही खेल ही बदल जाएगा हमारे चारों ओर का। आपको मारने के लिए 100 लोग आ गए हैं, हथियार हैं उनके हाथ में, आप घबराए नहीं और बाबा को बुला लिया, आ जाओ, देखना चमत्कार, 100 के 100 पूंछ दबा के भाग जाएंगे, बंदूकें वहीं रख जाएंगे कि लो तुम्हारे काम आएंगे, ये होगा आगे आगे देखना आप। बस बात यही है कि घबराएं नहीं, घबरा जाएंगे तो याद थोड़ा ही आएगा बाबा साथ है, वो आ जाएगा, फिर तो हाथ जोड़ेंगे या बच के भागने की कोशिश करेंगे। स्मृति स्वरूप रहना, वो ज्ञान सूर्य है, उसकी किरणें निरंतर हमको मिलती हैं, सभी समय के अपने जीवन के महत्व को समझना, और इन पांचों चीजों का बहुत अच्छा अभ्यास करना, सब जुड़ी हैं एक दूसरे से, तो योग बहुत अच्छा लगेगा। किस किस का योग अच्छा लगता है जरा हाथ उठाओ, यहां नहीं घर में, ठीक है, अब हम योग करेंगे, मैं 7:15 तक आपके पास हूं, 25 मिनट योग करेंगे, पावरफुल रेड लाइट, और ये पांचों बात याद रखना, अपने स्वरूप को देखेंगे भ्रकुटी की कुटिया में, मैं 7:15 तक होऊंगा, फिर आप 7:30 तक करेंगे ही यहां। मैं चमकती मस्तक मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर शक्तियों का बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है, शक्तियों का घेरा। क्षणों के लिए फील करें, देहे है ही नहीं, मैं निराकार आत्मा, मैं परम पवित्र बहुत बहुत भाग्यवान, ईश्वरीय सुखों से भरपूर हूं। मैं पुण्य आत्मा हूं, उठ चली अपने धाम, ये परम धाम है। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। शांति सागर की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। सृष्टि के बीज रूप से बाबा अब बुद्धि उन पे स्थिर करेंगे। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान उनकी तेजस्वी किरणें सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रही हैं। वे सुख शांति पवित्रता के सागर हैं। ज्ञान के सागर मेरे बाप टीचर सदगुरु मेरे मन के मीत खुदा दोस्त हैं। देखें उनका तेजस्वी स्वरूप उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। यहां से। मैं आत्मा उत्तरी देवलोक में, देव स्वरूप सामने ले आए, कंचन काया, सिर पर डबल ताज, यहां मैं सर्वगुण संपन्न, सोल है कला संपूर्ण निर्विकारी हूं। चारों ओर देखें, स्वर्णिम संसार दूर दूर तक चमकते सोने के महल, बहुत बड़े बड़े घर, आंगन में खड़े हैं पुष्पक विमान, चारों ओर प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध, मैंने एक देव शरीर छोड़ दूसरा लिया, दूसरा छोड़ तीसरा चौथा, कभी देव कभी देवी, शरीर लेते और छोड़ते, मैं आत्मा आ गई अपने अंतिम शरीर में, प्रकृति की कुटिया में, इस देह में मैं फरिश्ता हूं, प्रकाश के शरीर में हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी गोल्डन आभामंडल है, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूं। पूर्वज सभी की पालना करने वाला, सभी के दुख हरने वाला, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, सिर के ऊपर छत्र छाया है, वे मेरे साथी हैं। जो विश्व रक्षक हैं वो मेरी छत्र छाया हैं। जो सर्वशक्तिवान हैं वे हजार भुजाओं सहित मेरे साथ हैं। उनकी किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। संसार को सच्चे मन से दुआएं दें। मैं पूर्वज इष्ट देवी सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों। सभी निष्पाप सभी विघ्नों से और भय से मुक्त हूं। मैं ग्लोब के ऊपर बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अभिषेक के अभ्यास में बैठेंगे।